नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 15। थोड़ा इसको और आगे कर लीजिए। तो इस अध्याय का शीर्षक है कि प्रहलाद महाराज ने नारद जी के मुखारविंद से किस प्रकार उमा के उदर में होते हुए भी इस सार ग्रहित उपदेश को उन्होंने ग्रहण किया। और यह प्रसंग खास करके प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को मतलब अपने मित्रों से बता रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय के शुरू में ही उनके दोस्तों ने प्रश्न किया कि हम लोग साथ साथ रहे, एक साथ स्कूल में पढ़े और हम लोगों से तुम अलग और कोई शिक्षा लेने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन तुम्हारी जो ये स्वभाव की भक्ति की जो प्रक्रिया है तुमने कब सीखा और किससे सीखा? तब अपने प्रकट होने से पहले अपने आंतरिक हृदय की जो भाव थी भक्ति रूपी आंख से और भक्ति रूपी ज्ञान से जो उन्होंने ग्रहण किया था उस चीज को इस अध्याय में व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आंखें दो प्रकार की होती हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। हमें किस वस्तु को किस ढंग से देखना है यह भी हमें तरीका पता नहीं है। प्रहलाद महाराज किस ढंग से उसको देखे और उससे पूर्व नारद जी ने माँ कयाधु के चरित्र को कैसे अवलोकन किया, कैसे देखा, उस दृष्टि को भी हमें अपने जीवन में उतरने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि परम भागवत इस भागवत ग्रंथ के अंदर अधिकांशतः जितने भी शुद्ध भक्त हुए या जो बारह महाभागवत हैं उनमें से अधिकांशतः नारद जी के उपदेशों से ही एक परम भागवत बन पाए। तो हम एक परम भागवत के मुख से एक परम भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी उस प्रकार की भावा रहित नहीं होना चाहिए, भाव सहित होना चाहिए। क्योंकि भागवत के शुरू में ही बता दिया गया है कि अगर वक्ता से अगर अच्छी कथा कहानी है कहलवानी है तो श्रोता को भी अपना उत्साह दिखाना होता है, सुनने की उत्कंठा दिखानी पड़ती है। ये नहीं कि वक्ता बोलते जा रहे हैं, वक्ता बक बक करते जा रहा है और श्रोता सोते जा रहा है। दोनों की प्रकाष्ठा उत्तरोत्तर बढ़, सुनने वाले की भी भाव बढ़ते रहनी चाहिए और सुनाने वाला का भी यही भाव होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा भगवान के विषय में कुछ बता सकें। तब कथा का रसास्वादन कोई कर पाता है। अब हम लोग उस प्रसंग के ऊपर चले कि कहाँ कथा पहुंच चुकी है। कल महाराज श्री ने भागवत के इसी अध्याय का 14 श्लोक लिए थे, जिसका अनुवाद पढ़ने से पता चल जाएगा कि श्लोक का तारतम्य अगले श्लोक से किस प्रकार का है। तो हम लोग पहले इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे, उसके बाद श्लोक के ऊपर विचार करेंगे। विचार क्या करना है, जो हमारे आचार्यों ने दिया है, जो हम लोगों ने अपने आचार्य लोगों से सीखा है सुना है, उसी को हमें दोहराना है, अपना कोई मंतव्य नहीं देना है। ऋषि कारुणिक तस्या प्रादात उभयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम् अपि उद्दिश्य निर्मलम्। ऋषि कारुणिकस्तस्य प्रादातो भयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वज्ञानं च माम उद्दिश्य निर्मलम्। ऋषि कारुणिकस्य प्रादातो भयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वज्ञानं च माम उद्देश्य च निर्मलम्। ऋषि कारुणिकस्य प्रादातु उभयमेश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम उद्देश्य निर्मलम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ऋषि नारद मुनि कारुणिक पतितों पर अत्यधिक स्नेहशील या कृपालु तस्या उसको प्रादात उपदेश दिया उभयम् दोनों को ईश्वरः शक्तिमान नियंता नारद मुनि जो चाहे सो करें धर्मस्य धर्म का तत्त्वं सत्य ज्ञानं ज्ञान च तथा मां मुझको अपे विशेष रूप से उद्देश्य इंगित करके निर्मलम भौतिक कलमस से रहित। अनुवाद पहले मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे दोहराइएगा। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि ये स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। वे ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। कृपा करके इस दिव्य अनुवाद को आप लोग दोहराइए। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कलमश से रहित थे। हरे कृष्ण। तो मैं पीछे वाला अनुवाद पढ़ रहा हूँ इससे, क्योंकि प्रसंग जुड़ जाएगा, पता चलेगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहां वे अत्यंत भक्ति पूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। हर जगह साधुओं की संगति और साधुओं की सेवा की वर्चस्व दिखाई गई है। साधु की संगति करने के कारण ही इस श्लोक में प्रहलाद जी यह कह रहे हैं कि नारद ऋषि है, और ऋषि की विशेषता यह है जो कारुणिक होते हैं, दूसरे के हितैषी होते हैं, वो सदा अपने काय, वाचिक और मनसा इन तीनों से किसी दूसरे की भलाई ही चाहते हैं। इसलिए नारद शब्द की विशेषण में प्रहलाद जी ऋषि शब्द कई श्लोकों में उच्चरित किए हैं, और साधुओं की सबसे बड़ी सबसे विशेष गुण सहृदय दयालुता, उसकी हृदय बहुत ही सदय होती है, दयायुक्त। वह जहां भी उसकी दृष्टि पड़ती है, वह किसी की भला छोड़कर के किसी के विषय में बुरा तो उसके मन में आता ही नहीं। इसलिए नारद की स्थिति को प्रहलाद जी जानते हैं और प्रहलाद की स्थिति को नारद जी जानते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति दोनों आपस में देख रहे हैं। नारद जी के वचन को प्रहलाद जी मां के पेट में रहते हुए उन्होंने ग्रहण किया। पीछे वाले श्लोक में बताया गया है, अध्याय शुरू होने होते होते ही एक दो श्लोक के बाद यह बात बताई गई है कि प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी माँ भूल गई और आदि कल से, क्योंकि बहुत समय तक नारद जी के आश्रम में कयादू रही और नारद जी प्रतिदिन उपदेश देते रहे, लेकिन काल क्रम के प्रभाव से उस उपदेश को, प्रहलाद जी कहते हैं कि काल क्रम के उपदेश से उस उद्देश्य को या जो नारद जी ने सार ग्रहित उपदेश दिया था उसको मेरी माँ भूल गई, लेकिन मैं उस चीज को नहीं भूला। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नारद जी के भक्ति रूपी ज्ञान को प्रहलाद जी ने डायरेक्ट स्वीकार किया, लिया और उसको प्रत्यक्ष देख रहे। आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए कि गर्भस्थ शिशु कहाँ मलमूत्र के थैले में उल्टी दिशा में पड़ा है, जहां मां के पेट से गर्मी के से उत्पन्न हुए कीड़े जहां काटते हैं, उस स्थिति में वह बच्चा कैसे किसी के उपदेश को ग्रहण कर रहा है? अगर दिव्यता की स्तर नहीं होती तो इस प्रकार की बातों को प्रहलाद महाराज ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए नारद शब्द की विशेषता विशेष वर्णन करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि माम उद्देश्य, मुझे उद्देश्य बनाकर, मेरे को संकेत करते हुए श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, मेरे को उद्देश्य बना करके किया कथा मैं प्रहलाद को सुनाऊं, मुझे ही टारगेट बना करके नारद जी मेरे लिए कथा सुना रहे। लेकिन ऊपर वाली लाइन में आया है उभयम ईश्वरम, मां और बेटे दोनों को, उभयम मतलब दोनों को सुनाया जा रहा है। एक के माध्यम से दूसरा सुन रहा है। कयाधु प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है और मां कयाधु के उदर में प्रहलाद जी हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि माम उद्देश्य, मेरे को इंगित करके, वो अर्थात वो मुझे ही कथा सुना रहे। भगवान के विषय का अगर जहां विशद वर्णन होता हो वहां निश्चित रूप से अपने चित्त को सर्वत्र सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से समाहित करके एक चित्त से भगवान के उन उद्देश्य रूपी उपदेश को सुनने की जरूरत है। और यहां चित्त वृत्ति की विक्षेप न हुए बिना प्रहलाद महाराज नारद जी के वचनों को सुने, इसलिए मां तो उस चीज को भूल गई लेकिन प्रहलाद भूले नहीं। गुरु हो तो ऐसे और शिष्य भी हो तो ऐसे। तथाकथित साधु बनने की जरूरत नहीं है कि महाराज कुछ कहें और हम कुछ करें। कदाचित कल्याण नहीं होगा इस लोक में भी और पारलोक में भी, परलौकिक सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति की रस दी गई है और कुछ नहीं है, और इस रस को वही ले पाएगा जो उस प्रकार की रसा स्वादन करने की उत्कंठा रखता है। क्योंकि पहले शब्द से, कारुणिक शब्द से ही यहां संकेत किया जा रहा है कि पहले हम साधु तो बने। हम अपने हृदय में किसी के प्रति दया की भाव तो लाएं। और प्रभात जी एक जगह लिखते हैं कि दया का अर्थ यह नहीं है कि किसी को रोटी दे दो, किसी को कपड़ा दे दो, बस यह दया है। प्रभात साफ शब्दों में लिखते हैं कि असली दया यह है कि संसार से छुड़ा करके उसे भगवान का बना दो। ये सबसे बड़ा उसका कल्याण है, सबसे बड़ी उसकी भलाई है। उस दृश्य को अपने ऊपर परंपरागत विधि से उतारने की जरूरत है। हम लोग कितना अवहेलना करते हैं किसी किसी का, साधु का, शास्त्र का। ठाकुर जी तो छोड़ो, ठाकुर जी तो इस बात को लेते ही नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज को लेते हैं। लेकिन इस चीज को लेने के बजाय भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के मुख से जो दिया है उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। अब इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या चीज है। अगर किसी से पूछा जाए कि धर्म किसको कहते हैं, क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर ही कुंती महारानी के प्रसंग में शायद 19वें अध्याय के अंदर युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण इंगित कर रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, राजधर्म के विषय में, स्त्री धर्म के विषय में, सभी धर्मों के विषय में तुम भीष्म पितामह से पूछो, नहीं तो अब इस शरीर को छोड़कर के जाने वाले। तो वास्तविक धर्म शास्त्र यह बताता है, भागवत यह बताता है कि और किसी की सेवा नहीं। सवय पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे। जिस प्रकार से जितना भी हम कर सकें सारे प्रयास से संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो जितना भी हम धर्म का अवलंबन कर लें, विडंबनम कर लें, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि असली धर्म वह है जो भगवान ने अपने पाने की उपाय बताया है कि मैं इस कर्म से आपको मिल जाऊंगा और आसानी से मिलूंगा। और ज्ञान शब्द से भी यही इंगित होता है कि अगर भगवान के रूप के अलावा, भगवान के बताए हुए बात के अलावा अगर हम और किसी को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह ज्ञान नहीं है, उससे हमें बंधन ही लगेगा। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के अंदर माँ देहूति भगवान कपिल देव से जो भक्ति मार्ग है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं, उस प्रश्न को उसने पूछी। माँ देवती ने प्रश्न किया है भगवान कपिल देव से कि हे देव, वहां भगवान संबोधन नहीं किए माँ देवती, कहती है हे देव, आप उस उपाय को बताइए कि मेरे जैसी अवला स्त्री जो ज्ञान में कम हो और कोई योग तपस्या न कर सके, तो उसके लिए कौन सा धर्म है, उसके लिए कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करके हम आंसू आपको जल्दी प्राप्त कर सकते। अगर उस अध्याय को पढ़ते हैं भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय को, तो पूरा माँ देहूति के माध्यम से भगवान कपिल देव ने केवल धर्म की ही बातें कहा, वो रहस्य को ही उन्होंने केवल बताया। पहले इस श्लोक के तात्पर्य को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इस श्लोक के संबंधित माँ देहूति को जो भगवान कपिल ने उपदेश जो दिया था, दो तीन श्लोक मैंने लिया है जिसके भाव को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या चीज है जिसको हम अपने जीवन में ग्रहण करके हम अपनी वास्तविक भलाई कर सकते हैं। इसमें प्रहलाद महाराज तो इस अनुवाद में इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मुझे ही संकेत करके नारद जी उस कथा को सुना रहे हैं। अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में ये उपदेश दिए, क्योंकि नारद जी की स्थिति या प्रहलाद की स्थिति भी कोई साधारण नहीं थी। कहा जाता है साधारण बोलचाल की भाषा में कि अगर जैसी स्थिति परिस्थिति हो या जैसा समाज हो उसके अनुसार उपदेश देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा क्लास का लड़का हो तो अगर उसको उससे ऊंची क्लास की शिक्षा दी जाए तो शायद उसको समझ में नहीं आएगी। तो जो अपना लेवल है भक्ति का, जो हम लोग शुरुआत में जिसको जिस स्तर से जिस क्रम से शुरू किए हैं उसको क्रम के अनुसार हम कैसे अपने जीवन में विकास कर पाएंगे, उस तरीके को स्वीकार करना है, तब उस उपदेश को तथाकथित ग्रहण करके हम अपने अंदर जो कलमश है उसको दूर कर सकेंगे। अब प्रहलाद के जीवन चरित्री के माध्यम से प्रभुपाद जी के हृदय की आंकड़ा कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने हृदय की भाव लिखते हैं तात्पर्य के अंदर। श्रील प्रभुपाद महाराज की, यहां पर यह कहा गया है कि धर्मस्य तत्त्वम ज्ञानम च निर्मलम। धर्म उसी को कहते हैं जो निर्मल ज्ञान प्रदान करता है, जिसके अंदर भौतिक किसी भी प्रकार की कलमश नहीं है, अर्थात ज्ञान का वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जिस ज्ञान से हम इस सारे बंधनों को पीछे छोड़ करके भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाएं, वह वास्तविक ज्ञान है। वह ज्ञान को ज्ञान हम नहीं कह सकते कि जिससे हमें प्रतिदिन क्या प्रति क्षण हमें फंसने की नौबत आती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निर्मलम शब्द निष्कलंक धर्म का सूचक है, अर्थात यो कहें कि भागवत धर्म का सूचक है। निर्मल इसीलिए भागवत को कलुष रहित ग्रंथ कहा गया है, और भागवत के अंदर ऐसे कोई अधर्म की बातें नहीं बताई गई, इसलिए भागवत की कथा ही या भागवत सुनना ही वास्तविक धर्म है। अरे वास्तविक धर्म अगर नहीं होता तो भागवत के प्रथम स्कंद पढ़ करके देखिए, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक श्लोक के अंदर कि केवल हम भागवत सुनने की केवल इच्छा करते हैं तो भगवान इच्छा करने मात्र से हमारे हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। पहले तो मेरे विषय में सुनने की इच्छा किया, अब सोचो जिस हृदय के अंदर प्रतिदिन उत्कंठा बढ़ती जाती है भगवत कथा सुनने की, तो भगवान से दूर कहाँ है। इसलिए कथा इस कलयुग में भगवान के विषय में सुनना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भागवत धर्म, क्योंकि जितना ही हम भगवान के विषय में सुनेंगे उतना ही हमारी अटूट विश्वास भगवान के प्रति बढ़ती जाएगी। हम सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, आचार्यों के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन करने के बावजूद भी हम बैठे यहाँ हैं लेकिन मन कहीं और है, कहां से हम भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए निर्मल निष्कलंक धर्म है तो भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ है भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत भक्तों की संगति, ये सब चीजें। सामान्यतया कर्मकांड कलमस ग्रस्त धर्म के अंग होते हैं, क्योंकि जिस तथाकथित धर्म से हम बंधते जाएं, फंसते जाएं, वह धर्म भागवत धर्म नहीं है या वह कार्य धार्मिक कर्म नहीं है। कर्मकांड कलवश ग्रस्त धर्म के अंग होते हैं, जिनसे लोग अपनी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लाभ उठाते हैं, लेकिन कलमशहीन शुद्ध धर्म में ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना एवं तदनुसार कर्म करना ही निहित रहते हैं। शुद्ध धर्म वह है जिससे हम अपने असली संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर सकें। जिसमें जीवन का सर्वोच्च मंतव्य तथा भागवत धाम की वापसी दोनों पर दोनों पूरे होते हैं। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया कि जीवन के प्रारंभ से मनुष्य को भागवत धर्म के स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने अभी तो 15-16 श्लोक हुए, लेकिन कम से कम 5-7 बार प्रभुपाद ने इस श्लोक को कोट किया। अनुवाद में भी संकेत उस बात को करते हैं और तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक को कौमार आचरित प्राज्ञ श्लोक का श्लोक को लिखते हैं। भागवत स्वयं भी शुद्ध कलमश रहित धर्म की बात करते हैं। जब वे भगवत गीता में भगवान स्वयं भी शुद्ध कलमश रहित धर्म की बातें करते हैं, जब वे भगवत गीता में कहते हैं 18:66 श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना चाहिए, तब उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति योग। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति योग का अर्थ ही है कि भगवान ने जो कहा है उस पर पूर्णतः विश्वास करना। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के 66वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि माम शरणम, तो तुम इतना विश्वास करो, चिंता मत करो, झिझको मत, केवल मेरे पास आओ, इतना विश्वास कर लो। सभी धर्मों को छोड़ने का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि भगवान का कहने का मतलब यह है कि तुम झिझको मत, चिंता मत करो, अवश्य मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में, और किसी के पास मत जाओ। और सबसे बड़ी कमी यही है, सबकी त्रुटि यही है कि भटक जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होने के बाद हम इस पथ से भटक जाते हैं। प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद के एक श्लोक को इंगित यहां कर रहे हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत त्यागो जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति का अर्थ है, भगवान से जुड़ने का अर्थ है कि और सारी चीजों में आसक्ति न हो, केवल भगवान में आसक्ति। अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि भगवान में आसक्ति हो, इसका मतलब डायरेक्ट हमारा भगवान में कोई आसक्ति नहीं हो पाएगी। आचार्यों के पथ पर चलने वाले उन भक्तों में, और सबसे पूर्ण विश्वास इन भगवान के शब्दों में, इस ग्रंथ में। अरे भागवत में ऐसे ही लिख दिया गया है, लिखने वाला तो कोई हमारे जैसा आप जैसा ही साधारण व्यक्ति होगा ना। ऐसे कह करके इस ज्ञान को हल्का कर देना सबसे बड़ी त्रुटि है। और यही कारण है कि लोग भगवान को भी कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है। अरे भगवान को किसने नहीं देखा है, तुमने नहीं देखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने नहीं देखा। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं प्रतिदिन देखता हूं, प्रतिदिन खिलाता हूं, प्रतिदिन उनको सुलाता हूं। भाव तो हो लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है तो हमें यह दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भक्ति योग का अर्थ ही है कि कृष्ण के लिए जिए। जो भी हम कर रहे हैं इस शरीर से उसको हम विचार करके जरूर करें कि इससे हमारे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं। प्रभुपाद ने इतना प्रचुर मात्रा में हम लोगों को भक्ति के साधन दे दिए हैं कि किसी इन सेवाओं में से किसी एक को भी पकड़ करके हम आसानी से भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर कोई नियमित रूप से केवल प्रसाद खाए तो भी भगवान के धाम जा सकता है। कोई नियमित रूप से केवल भगवान को प्रणाम करे तो भी भगवान के धाम जा सकता है। गीता भागवत पढ़े तो भी धाम जा सकता है। आप सोचिए कितना आसान तरीका उन्होंने दिया। किसी को एक को तो हम पकड़े और जो सब कर रहे हैं वो तो अति भाग्यशाली, उनके लिए तो बारहों दरवाजा खुला है ठाकुर जी का, जिसमें मर्जी हो उसमें घुस जा। अब एक निष्ठता के किस प्रकार पूर्णता गोपियों को भगवान के ऊपर विश्वास था, सूरदास जी का एक पद है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला समारोहण करके अपने धाम चले गए तो उन्होंने उद्धव जी को संदेशवाहक उपदेशक बना करके भेजा व्रज के अंदर। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री बुद्धि उत्तम सत्तम। उद्धव जी की विशेषता भागवत के दशम स्कंद में बताया गया है कि वृषणी वंशी के वो मंत्री थे। और ऐसे नहीं, प्रवर अर्थात प्रखर बुद्धि के थे। वैसे व्यक्ति को, सबसे तेज बुद्धि वाला व्यक्ति को भगवान ने उपदेशक बना करके भेजा व्रज के अंदर। और कैसे भक्तों को समझाने के लिए जो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती थी। सूरदास जी एक पद में लिखते हैं कि जब काली कमली है तो उस काली कमली के ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं। क्योंकि जब उस काला सर्प ने और काला स्वरूप ने जब हमारे हृदय को छीन लिया है तो हे उद्धव, उस भाव में सूरदास जी लिखते हैं कि हे उद्धव, गोपियां यह कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बड़े ज्ञानी तो जरूर हो, जिसको भगवान चुन करके भेजे हैं हम लोगों को समझाने के लिए, तो इस बात को हम लोग जरूर स्वीकार करते हैं कि आप बुद्धिमान तो हो, लेकिन जितना शायद स्तर आपका भक्ति का ऊंचा है उतना हम लोगों की स्तर उतनी ऊंची नहीं है, इसलिए हम उस आपके ब्रह्म की उपासना की पद्धति को और उस ब्रह्म को, उस निर्गुण ब्रह्म को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लाख प्रयास किए अपने ज्ञान को गट्ठर को लेकर के उद्धव जी गए ब्रज के अंदर और गोपियों के सामने उस निर्गुण ब्रह्म की गट्ठर को उन्होंने पटक दिया। लगे उपदेश देने, लेकिन यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो विधि विधान है गोपियों के पल्ले नहीं पड़ा। प्रश्न करती हैं गोपियों से, गोपियां प्रश्न करती हैं उद्धव जी से कि तुम बताओ पहले तुम्हारा ब्रह्म कौन है, किस देश का वासी है, उसका आईडी प्रूफ बताओ, उसके माँ बाप कौन है, उससे कौन स्त्री प्रेम करती है, जब इस प्रकार की गोपियों का प्रश्न का झड़ी लग गया तो उद्धव जी पेड़ की तरह चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। लिखते हैं गोपियों के एक निश्चयता के भाव को उद्धव, अरे सूरदास जी, महाराज इस पद को गा करके इतना भाव विभोर हो जाते हैं मेरे गुरु महाराज, सूरदास जी लिखते हैं, पहले मैं उस अनुवाद को मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए कि इस पद्य का अर्थ क्या है। गोपियां उद्धव के ज्ञान मार्ग का परिहास करती हुई कहती है कि हे उद्धव जी, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बार बार बातें कर रहे हो, यह तो बताओ कि वह निर्गुण किस देश का निवासी है। हे मधुकर, मधुपति के द्वारा भेजे गए मधुकर हो, संदेश लाए हो, उनके उपदेश को सुनाने आए हो, समझाने आए हो, तो यह बताओ कि उस निर्गुण के बारे में समझाकर बताओ कि हम सौगंध देकर के तुमसे पूछती हैं कि सच क्या है। इसमें हंसी की बात नहीं है, तुम्हारे लिए उस निर्गुण ब्रह्म का, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, और वह किस नारी का दास है। आप सोचिए इन प्रश्नों में कितना गुहे रहस्य छिपा हुआ है। वह किस नारी का दास है, उसका रंग कैसा है, जब निर्गुण ब्रह्म है तो उसका स्वरूप क्या है, उसका वेश कैसा है, वो उसका वेशभूषा कैसा है, और वह श्रृंगार आदि रसों में से किस रस में रुचि रखता है। यदि तुमने हमसे छल पूर्वक बातें की या झूठे बोला तो अपने किए हुए दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज गोपियों की ये बातें सुनते ही उद्धव जी ठगे से मौन होकर खड़े रह गए और उनका सारा ज्ञान गौरव नष्ट हो गया। सूरदास जी लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियां पूछती हैं उद्धव जी से कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को बात कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है। मधुकर कही समुझाई सौदे सूझत सांच न हंसी। हे संदेशवाहक, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है कि हम मजाक कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस स्वरूप में है, ये हंसी की बात नहीं है, सत्य बताओ। गोपियां कहती हैं कि हम अपना सौगंध देकर के कहती हैं कि सच बताओ कि वो कहाँ रहता है, हमें भी विश्वास हो जाए। यह है सच्ची भक्ति। ज्ञान से भगवान को कोई नहीं समझता। ज्ञान से कोई भगवान को जल्दी नहीं समझ सकता। भक्ति के अंदर सारे अष्टांग योग आ जाते हैं, भक्ति योग के अंदर सारे योग आ जाते हैं, और भक्ति से हम भगवान को जानते हैं, भक्ति से हम भगवान से जुड़ते हैं, सारी योग आ जाती है इसके अंदर। को है जनक कौन है जननी, सूरदास जी के भाषा में सुन लीजिए, गोपियां कहती हैं कि कौन पिता है और कौन माँ है, जननी है। जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे करने को बोल रहे हो कौन है, हम तो एक ही जानते हैं नंद के लाला को, जसोदा मैया को लाला को जानती हैं, और किसी को तो हम जानते ही नहीं। लेकिन जिस ब्रह्म की उपासना करने को बोल रहे हो बताओ कहाँ का रहने वाला है, उसके माँ बाप कौन है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, ये तो एक बार विचार कर लो किसको उपदेश करने आए हो। वो गोपीनाथ है, वो गोपियों का दास है, ये आपको पता नहीं कि किसको उपदेश करने आए हो। और वो किसका दासी, किसका दास बनने वाला है। हम उनके दासी हैं और हमारे उपासक हैं, और हम किसको नहीं जानते। अगर है तो उसके माँ बाप का नाम बताओ, उसका घर बताओ, उसका एड्रेस बताओ, हम लोग उनकी उपासना करेंगे, उससे प्रेम करेंगे। कैसे वर्ण भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है। हम तो इस ब्रज के अंदर, इस गोकुल के अंदर केवल एक ही को जानते हैं, जो माखन चुराता था, जो गाय को चराता था, जो हम लोगों के मन को चुराता था, और किसी को तो हम जानते ही नहीं। कैसे वर्ण भेष है कैसो, किस रस में अभिलाषी, उसको किस रस का स्वाद लगा है। भगवान को माखन का स्वाद नहीं लेना था। जो भी माखन चोर भगवान जिस गुण के कारण चोर कहलाए, वो भक्तों के हृदय को प्रेम के भाव को चुराने के लिए जाते थे। माखन तो जिनके बाप की 9 लाख गाय हैं उनको दूध दही की कमी है, माखन की कमी है। जो उन्हें याद करता था, जो उन्हें बुलाता था, उसके प्रेम को स्वाद को लेने के लिए जाते थे। पावे गए कुने कियो आपनो, ये बताओ आपने कौन सा पुण्य किया था, कौन से कर्म किए थे जिससे आप उस निर्गुण ब्रह्म को पाए। अरे हम लोग तो एक ही कर्म किए, हम लोग तो बस उस नंदे के लाला को देखे और उसके साथ खेले, उसको ही देखती रह गई, और हमारे आंखों के सामने और उस काला के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा। पावेगी पुनी कौन कियो आपनो, जोरे करयुग गांसी। अब मन में और किसी दूसरे के प्रति या दूसरे स्वरूप को हम अपने मन के अंदर उसको धारण ही नहीं कर सकते, केवल उसके अलावा। यह है एकाकी भक्ति, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इतना पूर्ण विश्वास होगा तब हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। सुनत मौन हुए रहो बावरो, उद्धव जी को सूरदास जी कहते हैं कि जो बावरो बनकर के, परम पंडित बनकर के, ज्ञान के गट्ठर को लेकर के गए थे, वो बावरे की तरह देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए कि ये इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाए उद्धव जी। ऐसी गोपियों का प्रश्न था कि भाई तुम उस ब्रह्म का नाम पता बताओ, उसके माँ बाप का नाम बताओ, घर बार बताओ, उसका वेशभूषा बताओ, हम लोग पूजा करेंगे उनकी, मान जाएंगे उस बात को। खड़े की खड़े ही रह गए उद्धव जी। यह है एकाकी भक्ति। इस प्रकार की एकनिष्ठ भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। एक श्लोक में केवल माँ देहूति के प्रसंग का मैं सुनाता हूँ। भगवान स्वयं बता रहे हैं देहूति को कि योग अध्यात्मिक पुंसाम मतो नहीं श्रेयसाम में अत्यंतो परम त्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल देव कहते हैं माँ देहूति से कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों का आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। सभी मनुष्य अगर अपना अंतःकरण अंदर से कल्याण चाहते हैं और बाहर से कल्याण चाहते हैं तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि हर पुरुष को मतोनि श्रेय साम में मेरे में ही अपनी मति लगानी चाहिए, मुझसे ही प्रेम करने के तरीके को सीखना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति अगर नहीं करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की सुख नहीं होगी। अध्यात्म योगी मनुष्यों का आध्यात्मिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहां दुख और सुख की निवृत्ति हो जाती है। अगर हम पूर्ण रूपेण भगवान के वाक्यों पर, भगवान के स्वरूपों पर, भगवान की कई बातों पर अगर विश्वास करके अगर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाता है। और यह भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा। इसलिए इन बातों पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। ये भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 13वां श्लोक है। भगवान अपनी भगवत्ता का महत्व स्वयं बता रहे हैं कि जो मेरे शरण में आएगा वह अपना अत्यंतिक कल्याण कर लेगा। और अर्थात कहने का मतलब यह है भगवान का कि जो मेरे शरण में नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं है। यह चीज हरे कृष्ण ग्रंथराश्रवत भागवतम की श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरि प्रेमानंदे।